الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस खुतबे और इन दुआओं के साथ हम आज की तफसील क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। सूरह माईदा की आयत नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, मआरिफुल कुरआन की जिल्द नंबर 3 से। जो आखिरी नुक्ता हम पढ़ रहे थे वो मआरिफुल कुरआन की सफ़ा नंबर 32 पर है, यानी जिल्द नंबर 3 की सफ़ा नंबर 32, पेज नंबर 32 पर। और इसमें हमने ये इस आयत की तफसीर पढ़नी शुरू कर दी थी। अलयौमा यईसा अल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, कि आज के दिन कुफार तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो चुके हैं, इसलिए अब तुम उनसे कोई खौफ ना रखो, अलबत्ता मुझसे डरते रहो। ठीक है, उनसे खौफ ना रखो का मतलब कि इस बात का खौफ ना रखो कि वो तुम्हारे दीन को अब ख़त्म कर देंगे या उसको बिगाड़ देंगे, उसका हुलिया ख़राब कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अब उनके हाथों से निकल गई हैं। अब इतने असबाब मैंने तुम्हें मुहैया कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही असबाब बनाने वाले हैं, असबाब अता करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने सारे असबाब मुसलमानों को जो अता किए कि अब जो है ना, वो कुफार इस बात से मायूस हो गए कि वो मुसलमानों को धौंस और धमकी के जरिए से अपने दीन को खराब करने पर मायल कर देंगे। ठीक है, या लालचों के जरिए से दीन को खराब करने पर मायल कर लेंगे। ये खत्म हो गया। अब अगर उन्होंने करना भी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जान ले लेंगे मुसलमानों की जमीन ले लेंगे, मुसलमानों का घर ले लेंगे, मुसलमानों को जो है वो दरबदर कर देंगे। लेकिन दीन उनसे नहीं निकाल सकेंगे, दीन उनसे नहीं छीन सकेंगे, यानी उनके अकायद को ख़राब नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसकी तफसीर में पढ़ा था पेज नंबर 32 के ऊपर कि ये आयत हिजरत के 10वीं साल हज्जतुल विदा के यौम अरफा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो कुदरतन आजकल भी हम ज़ुल्हिज्जा के ही अय्याम से गुजर रहे हैं और चंद ही दिनों में यौम अरफा जो है वो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर आने वाला है। इसके बारे में फजीलतें और बहुत सारे इसके जो जो करने के काम हैं, कुर्बानी के बारे में चीज़ें आप लोगों तक यकीनन पहुंची नहीं होंगी, कुछ एक आध जो है वो हमने भी आपके साथ शेयर करी हैं। तो ये बहुत ही अहम दिन है साल के। इनके अंदर जो नेकियां होती हैं उनका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अजर है, जैसे रमज़ानुल मुबारक की नेकियों का बहुत ज़्यादा अजर है, उसी तरह ये ज़िलहज्जा के जो अयाम हैं शुरू के, इनके अंदर भी नेकियों का बहुत ज़्यादा अजर है। तो अब इसमें हज़रत ने लिखा था कि इस आयत के नुज़ूल की ख़ास शान है, अरफा का दिन है जो तमाम साल के दिनों में सैयदुल अय्याम है। ठीक है, यानी दिनों में जो सरदार दिन है ना, वो ये अरफा का दिन है। और इत्तेफाक से ये अरफा जुम्मा के दिन वाक़ हुआ, यानी जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज किया था तो अरफा जुम्मा के दिन वाक़ हुआ था। इस दफ़ा भी जो अरफा यानी हज में अरफा है, वो तो जुमेरात के दिन वाक़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे इलाकों में जो में अरफा पड़ रहा है, यानी नवी जिलहज्जा तो वो जुम्मे के दिन ही पड़ रही है, अगरचे के हज तो सिर्फ यहीं पर होता है, ठीक है, मैदान अरफात में ही हज होता है। आप पाकिस्तान में हज नहीं कर सकते, इंडिया में हज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकते, इंडिया पाकिस्तान वगैरह के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई दीन की, वरना कुछ फिरकों के बारे में सुना है कि उन्होंने अपने इलाकों में ही हज जो है ना वो शुरू करके रखा हुआ है। तो फरमाते हैं कि जिसके फजाइल मारूफ हैं, मकाम मैदान अरफात के जबल रहमत के करीब है, यानी बिल्कुल उसकी बेस पर है, जो अरफा के दिन अल्लाह ताला की तरफ से नुजूल रहमत का खास मकाम है, वक्त असर के बाद का है, जो आम दिनों में भी मुबारक वक्त है, और खसूसन यौम जुमा में कि कबूलियत दुआ की घड़ी बहुत सी रवायात के मुताबिक इसी वक्त में आती है, यानी असर से मगरिब तक के जो वक्त होता है जुमे के दिन, वो यानी खसूसियत का, कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और अरफा के रोज और ज्यादा खसूसियत के साथ दुआएं कबूल होने का खास वक्त है। आगे फरमाते हैं, यानी यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आगे फरमाते हैं कि हज के लिए मुसलमानों का सबसे बड़ा पहला अजीम इज्तिमा है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख सहाबा कराम शरीक है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, 1,24,000 कुछ अंदाजे के हिसाब से, और कुछ अंदाजे के हिसाब से 1,44,000 ईमान वाले नबी अलैहिस्सलाम की मईयत में उस साल हज कर रहे थे। उससे एक साल पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सरबराही में भी मुसलमानों ने हज किया था, लेकिन वो एक बहुत छोटी तादाद थी मुसलमानों की। 9 हिजरी में भी हज हुआ था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के साथ, उससे पहले 8 हिजरी में भी हज हुआ था। ठीक है, माशाल्लाह, नुसुक ऐप है हमारी, इसमें भी में। तो ये वैसे अच्छा याद दिलाया इसने कि ये जो मैसेज भी भेजा था कि इन दिनों में ना मुस्तहब है ये तकबीर तशरीफ पढ़ना, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, उठते बैठते चलते, जैसे कि आपके साथ में उसमें शेयर भी किया है। और फिर वाजिब हो जाता है 9 जिलहज्जा की फजर से लेकर के 13 जिलहज्जा के असर तक, फिर हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों के लिए जोर आवाज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना एक दफा वाजिब है, और औरतों के लिए आहिस्ता आवाज में पढ़ना वाजिब है। अच्छा, तो फरमाते हैं कि जिसमें तकरीबन 1.5 लाख सहाबा कराम शरीक हैं, रहमतुल्लिल आलमीन सहाबा कराम के साथ जबल रहमत के नजदीक के नीचे अपनी नाका अव्वा पर सवार हैं, यानी उस दिन जो ऊँटनी नबी अलैहिस्सलाम के पास थी उसका नाम अव्वा था, वरना कस्वा जो है वो ज्यादातर आपसम के साथ कस्वा ऊँटनी रहती थी, लेकिन और भी ऊँटनियाँ आपसम के पास थी, और भी घोड़े भी नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाती इस्तेमाल में होते थे, ऊँटनियाँ भी होती थी। और हज के अब बड़े रुकन यानी वकूफ अरफात में मशगूल हैं। इन फजाइल बरकात और रहमतों के साए में ये आयत करीमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है। कौन सी वाली आयत? अल यौम यइस अल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, और इसके बाद की जो चंद एक और आयत है। तो इस यानी बेहतरीन मकाम और बेहतरीन वक्त इसमें यह आयत नाजिल होती है। सहाबा कराम का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत बजरिया वही नाजिल हुई, तो हस्बे दस्तूर वही का थकल और बोझ इतना महसूस हुआ कि ऊंटनी उससे दबी जा रही थी, यहाँ तक कि मजबूर होकर बैठ गई। ठीक है, तो हमने जब वो वाली हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामतुल्लाह की जो उलूमुल कुरान वाली किताब पढ़ी थी, बल्कि पूरी तो नहीं पढ़ी थी, उसमें से वो वाला हिस्सा जो कि वही के नुज़ूल वगैरह के बारे में था, और उसके ऊपर एतराज़ात वगैरह जो है बहुत सारे उसके ऊपर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें वही के किस्मों का भी बयान पढ़ा था। तो उसमें हम ये तफसील पढ़ चुके हैं कि जब आप ससरम के ऊपर वही नाजिल होती थी, तो आप ससरम जहाँ भी होते थे ना, तो वो जगह भारी हो जाती थी, ऊँटनी पर होते थे तो ऊँटनी जो है वो बोझ से जो है वो दब जाती थी। किसी के पैर के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने अगर अपना सर मुबारक रखा होता था, तो उसका पैर ऐसा महसूस होता था उसको जैसे उसका पैर टूटने वाला है, इतना बोझ हो जाता था नबी अलैहिस्सलाम का। ठीक है, तो एक रूहानी चीज एंटर हो रही होती थी, लेकिन फिजिकल बॉडी का जो है वो बोझ इंक्रीज हो जाता था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये आयत तकरीबन कुरान की आखिरी आयत है, इसके बाद कोई आयत अहकाम से मुतालिक नाजिल नहीं हुई। ठीक है, यानी और भी आयात नाजिल हुई हैं, अगर किसी को उसकी तफसील देखनी है तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ही इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह, सूरह फतह की जो तफसीर है ना, बिल्कुल आखिरी जिल्द मारफुल कुरान की, उसमें उसकी तफसीर मौजूद है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके अंदर फिर वो सारी आयात लिखी हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल आखिर में नाजिल हुई, एक के बाद एक सारी तफसीर लिखी हुई है वहाँ पर। तो इसके बाद अहकाम से मुतालिक कोई आयत नाजिल नहीं। ठीक है, क्या मतलब कि नबी यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, तो पूरा कुरान तो मुकम्मल भी नहीं हुआ इस वक्त। ठीक है, बाद में भी आयात आ रही हैं, लेकिन अहकामात वाली आयात जो है मुकम्मल हो गई। तो इससे कितनी ज्यादा अहमियत हमारे ऊपर जाहिर होती है, वाजे होती है कि ये दीन जो है ना, इसमें अहकामात अल्लाह ताला के कितने अहम है। हम इस दीन में से अहकामात को निकाल करके बाकी चीजों को दीन नहीं कह सकते, अगर उनमें से अहकामात निकल जाएं अल्लाह ताला के। ठीक है, तो शैतान की कोशिश जो है ना, वो ये भी बहुत ज्यादा होती है कि दीन के मुस्तहबात को जो है वो बड़ा अहम बना दिया जाए। जैसे आप लोगों के साथ एक क्लिप भी साथ इसने एक दूसरी क्लास से शेयर करी थी कि नवाफिल को जो है ना, वो इतना अहमियत दे दी जाए कि जो फराइज हैं, यानी फराइज क्या होते हैं, अहकाम। ठीक है, अहकामात से जो चीज साबित होती है उसी को फर्ज कहते हैं, तो उसकी अहमियत कम हो जाए या उसकी अहमियत खत्म हो जाए, और जो मुस्तहबात हैं या जो जो एक्सटर्नल अपियरेंसेस हैं और जो इस किस्म की चीजें हैं, ठीक है, उनको जो है वो इतना अहम इतना अहम इतना अहम कि देखने वालों को, सुनने वालों को और दीन पे चलने वालों को ऐसा लगे कि यही दीन और बाकी चीज जो है वो दीन नहीं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन इसको कहते हैं, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो इसकी अहमियत को हमें समझने की जरूरत है कि भाई अगर अहकामात पर अमल दरामत नहीं हो रहा तो किसी दूसरी चीज से मरऊब होने या मुतासर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। किसी दूसरी चीज से जो कि हुक्म में नहीं आती है बल्कि मुस्तहब में आती है या नवाफिल के अंदर आती है, या जो है वो जाहिरी अपेयरेंस से उसका ताल्लुक है, यानी दाढ़ी। ठीक है ना, दाढ़ी जो है वो वाजिब बेशक है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी आप जो है वो दाढ़ी रख करके आप झूठ बोल रहे हैं और फिर भी आप जो है वो नेक समझे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है दीन के अंदर। आप दाढ़ी रख करके किसी को जो है वो धोखा दे रहे हैं या दाढ़ी रख करके आप बेहयाई का काम कर रहे हैं तो आप दीनदार समझे जाएंगे क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है भाई आपने। ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सही है, इसी तरह की बहुत सारी बेशुमार मिसालें जो है हमारे सामने आती हैं, और खुसूसन आज के दौर के अंदर तो ये बहुत तमाशे चल रहे हैं। तो इसके बाद अहकामात से मुतालिक कोई आयत नाजिल नहीं हुई, और इसके ऊपर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैंने जो है वो तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, जो कि आगे आयत आ रही है। ठीक है, सिर्फ तरगीब व तरहीब की चंद आयतें हैं, तरगीब व तरहीब की चंद आयतें। ठीक है, तरगीब कहते हैं रग़बत दिलाना, शौक दिलाना। ठीक है, और तरहीब जो है वो खौफ दिलाना, डराना कि भाई अगर नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारे साथ होगा, ये भी पिटाई होगी, ये होगा, ये सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो आयात इसके बाद हैं जिनका नुजूल इस आयत के बाद बतलाया गया है। इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सिर्फ 81 रोज 81 रोज बेकैद हयात रहे, यानी इस दुनिया की हयात में नबी अलैहिस्सलाम बस 81 डेज जो है वो उसके बाद रहे, बाकी फिर हयात बरजख की तरफ मुंतकिल हो गए, इंतकाल फरमा गए बरजखी हयात की तरफ, कब्र वाली जिंदगी की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि 10 हिजरी की नवी जिलहज्जा में ये आयत नाजिल हुई और 11 हिजरी की 12वीं रबीउल अव्वल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। ठीक है, 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ पैदाइश नहीं हुई, जो वो भी 100% साबित नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई है, 12 रबीउल अव्वल को बहुत सारे उलमा की कैलकुलेशंस और उनके अपने दलाइल के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम की वफात ज्यादा साबित है, ठीक है, कंपेयर टू 12 रबीउल अव्वल की विलादत के। विलादत कम साबित है और वफात ज्यादा साबित है, ठीक है। बल्कि 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जो है ना, वो फुट नोट भी नंबर 1 करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि ये मशहूर कॉल की बिना पर लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर जो चीज़ जो 12 रबीउल अव्वल वफात का डेट लिखी है ना, तो ये ज्यादा मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। वरना खुद हजरत मुअल्लिफ कदस सराहू ने, यानी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाला सीरत खातमुल अंबिया के 144 सफ़े पर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज मुगलाताई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात 2 रबीउल अव्वल को सही करार दिया है, और 81 रोज इसी हिसाब से बनते हैं, ठीक है। तो अब डेट्स में आगे पीछे जो है ना वो है, किसी कॉल के मुताबिक जो है या किसी बड़े आलिम के कॉल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है, किसी के मुताबिक जो है वो 9 रबीउल अव्वल है, किसी के मुताबिक जो है 2 रबीउल अव्वल है। बहरहाल मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी एक तहकीक जो है वो इस वाले वाली किताब उनकी सीरत खातमुल अंबिया के अंदर वो 2 रबीउल अव्वल उन्होंने वहां पर लिखी है, ठीक है। बहरहाल हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 हो 2 हो, हमने तो वैसे ही नहीं मनाना, ना तो हमने तारीख वफात मनानी है ना हमने तारीख पैदाइश मनानी है, ठीक है। मनाने वालों को इनकी फिक्रें करने दें, इतना वो करनी है। आगे इसकी काफी तफसील मजीद लिखी है ही मनाने वगैरह के बारे में, यानी सेलिब्रेशंस के बारे में, तो आगे पॉइंट आ रहा है। अच्छा, ये आयत जो इस खास शान और इहतमाम से नाजिल हुई, यानी इतना जबरदस्त टाइम भी अल्लाह ताला ने चूज किया और इतनी जबरदस्त जगह भी अल्लाह ताला ने चूज करी इस आयत के नुजूल के लिए, तो इसका मफहूम भी मिल्लत इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और भारी इनाम और इस्लाम का तुगराए इम्तियाज है। तुगराए इम्तियाज भी कहते हैं ना, यानी मेडल है, मेडल ऑफ ऑनर या मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन इस्लाम और मुसलमानों के लिए, ठीक है। इस आयत का मफहूम भी, ठीक है, यानी इतना सिग्निफिकेंट मफहूम है इस आयत का, तो जिसका खुलासा ये है कि दीन हक और नेमत इलाही का इंतहाई मियार जो इस आलम में बनी नौ इंसान को अता होने वाला था, आज वो मुकम्मल कर दिया गया, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में इंसानों के पास आनी शुरू हुई थी, आज वो हिदायत जो है ना वो अपनी पीक पर पहुंच गई, अपने पिनिकल पर पहुंच गई, चोटी पर पहुंच गई, ठीक है, और मुकम्मल हो गई, अल्टीमेट हाइट तक पहुंच गई। इससे ऊपर मजीद जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी नहीं है कि मजीद जो है वो और कोई हिदायत की चीज आएगी, नई चीज आएगी, नहीं, ठीक है। अब बाकी जितना भी होगा वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस होंगी और एप्लीकेशंस होंगी, कोई नए अहकामात नहीं आएंगे, ठीक है, कोई नई गाइडेंस जो है वो अब मजीद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये किसको मिली? ये इस उम्मत को मिली, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें और आपको मिली। गोया यानी ये कितना बड़ा एहसास है इस उम्मत का और हमारे और आपके लिए कि हमारे लिए हिदायत जो है मुकम्मल कर दी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो हिदायत मिली थी वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई थी, वो इस पिनिकल तक नहीं पहुंची थी। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इस पिनिकल तक नहीं पहुंची थी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हैं, यानी हम जिनकी उम्मत कहलाते हैं, तो उनको ये मिली है। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो दीन हक और नेमत इलाहिया का नुजूल और तरवीज शुरू की गई थी, और हर जमाने और हर खित्ते के मुनासिब हाल इस नेमत का एक हिस्सा औलाद आदम को अता होता रहा, आज वो दीन और नेमत मुकम्मल सूरत में खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता कर दी गई, ठीक है। तो हर दौर और हर जमाने के इंसानों के जरूरियात और उनके अहवाल के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो थोड़ा 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 जो है वो हिदायत नाजिल करते गए, और हत्ता के इंसानियत भी जो है ना वो अपने मेराज पे पहुंच गई थी, इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग एंड फिजिकली स्पीकिंग, हर लिहाज से इंसानियत जो है वो अपने कंप्लीशन पे पहुंच गई थी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, ठीक है। एवरेज एज भी आप सल्लम के जमाने में सेट हो गई इंसानों की, ठीक है, और उसी तरीके से एवरेज हाइट भी जो है वो सेट हो गई, और इसी तरीके से एवरेज कैपेबिलिटीज भी जो है ना, एवरेज का मतलब यानी ओवरऑल एक बड़े सेट के ऊपर जो इक्वली जो कि यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे एवरेज का जो जो मफहूम है, ठीक है। तो अब किसी की एज जो है वो होगी 200 साल, 300 साल भी कभी हो सकती है, या 100 साल भी हो सकती है, और किसी की एज जो है वो 30, 40, 60 भी हो सकती है, लेकिन जब उसका एवरेज निकाला जाएगा तो ये 63 कमरी साल ये एवरेज एज निकलेगी, जबकि पिछली उम्मतों में एवरेज एज जो है वो 100 या 100 के ऊपर होती थी, या कभी 300 होती थी, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजों को आप इसी के ऊपर कयास कर लें। अच्छा, इसमें तमाम अंबिया व रसुल के जुमरे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत और इम्तियाजी शान का तो इजहार है ही, इसके साथ तमाम उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मरहूमा की भी एक खास इम्तियाजी शान का वाज़ह सबूत है। यानी इसी एक आयत का मफहूम, इसी के ऊपर बात हो रही है कि इसका मफहूम कितना अजीम शान, इसका मफहूम है कितने, इसके अंदर इनामात जो है वो इस उम्मत के लिए अल्लाह ने रखे हुए हैं। तो ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की शान जो है वो इससे जाहिर होती है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की भी शान इससे जाहिर होती है, ठीक है। यही वजह है कि एक मरतबा चंद उलमाए यहूद हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है जो अगर यहूद पर नाजिल होती तो वो उसके नुजूल का एक जश्न ईद मनाते। यानी यहूद जो है वो ना सिर्फ ये कि नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते थे अपनी किताबों के इल्म की वजह से, जो उनकी किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां थी, तो उनको इतना ज्यादा उन्होंने पढ़ा हुआ था और हिफ्ज किया हुआ था, घोल के अपनी औलादों को पिलाया हुआ था, अपनी नस्लों को वो पिलाते थे घोल घोल करके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो निशानियां मौजूद थी ना। जब भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहू, ऐसे वो जानते थे नबी अलैहिस्सलाम को। तो ना सिर्फ ये कि अपनी किताबों को पढ़ते थे और बहुत ज्यादा पढ़ते थे और याद रखते थे और गौर करते थे अपनी किताबों के ऊपर, अमल बस नहीं करते थे, बाकी सब कुछ करते थे, ठीक है, और हिफाजत नहीं करते, दो काम नहीं करते थे, एक तो जो उसके अंदर हुक्म दिया जा रहा था वही अहकाम का मसला, राइट। यहूद जो है वो अपनी किताबों को घोल के पी लेते थे, उसके अंदर पीएचडी, और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमफिल भी कर लेते होंगे और पीएचडी भी कर लेते होंगे, बल्कि डबल पीएचडी भी कर लेते होंगे अगर आजकल की यूनिवर्सिटी डिग्रियों के पैमाने पर देखा जाए। इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन क्या नहीं करते थे, दो काम नहीं किए उन्होंने, दो काम नहीं किए उन्होंने, एक तो उनके अहकामात पे अमल नहीं किया, और दूसरा काम क्या नहीं किया, हिफाजत नहीं करी, बल्कि तब्दील कर देते थे, बदल देते थे, ठीक है, क्या बदल देते थे, खुद तो उनको पता होता था कि इसके अंदर असल इबारत क्या है, अवाम को असल इबारत नहीं बताते थे, अवाम को असल हुक्म बताते ही नहीं थे, छुपा लेते थे, जैसे वो है ना हदीस मुबारका के अंदर वो वाकया कि मर्द औरत ने जो है वो गुनाह किया, तो अब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि हाँ भी ठीक है, तुम्हारे दीन के अंदर जो सजा है वो सजा हम देंगे, तो यहूदी आलिम आकर के कहते हैं कि हमारे दीन में तो इस गुनाह की सजा ये है कि इनको जो है ना वो जूते मारे जाएं, पता नहीं क्या गधे पे सवार किया जाए और जूते मारे जाएं कुछ इस किस्म का। तो गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि यहूदी से कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने इससे कही है कि तुम जो इबारत पढ़ रहे हो ना इसके ऊपर तुमने हाथ रखा हुआ है ना, हाथ जरा हटाओ उसके ऊपर से, ठीक है, हाथ हटाओ जरा उसके ऊपर से। तो उसने हाथ हटाया ना तो इबारत नजर आई, उसमें लिखा हुआ था कि इनकी वही सजा है, रजम की सजा, पत्थर मारने वाली सजा, ठीक है। तो क्या पता चला कि यहूद के जो आलिम थे, उलमा जो थे, इनको सही हुक्म का अपनी किताबों के अंदर पता था और अभी भी पता है, लेकिन अवाम को ये झूठ बोलते हैं, सच बताते नहीं, गलत करके बताते हैं, ठीक है। तो ये दो खसूसियात हैं इनकी, एक तो इल्म की, बल्कि तीन खसूसियात अगर आप कहें, इल्म में यानी इल्म की मेराज पे पहुंचे हुए हैं, इल्म की मेराज पे पहुंचे हुए हैं, अल्टीमेट हाइट्स ऑफ नॉलेज, लेकिन अमल गलत, अमल खराब, और दूसरी चीज ये कि हिफाजत नहीं की अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के जो है वो नाजिल किए हुए अहकाम की हिफाजत भी नहीं करी, तब्दील कर दिया, ठीक है। तो हम नबी अलैहिस्सलाम ने क्या, हमें क्या दुआ सिखाई है सूरह फातिहा के अंदर, इहदिना सिरात अल-मुस्तकीम सिरात अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाललीन, ठीक है, कि अल्लाह हमें उनकी सिरात के ऊपर, उनके रास्ते के ऊपर ना चलाइएगा जो कि आपके गजब का शिकार हो। गजब के कौन शिकार हो? यहूद, ठीक है, यानी उन्होंने जो हरकतें करी है ना, वो हरकतें हम ना करें। तो हम इल्म हासिल करना बहुत अच्छी बात है, इल्म हासिल करना कोई बुरी बात नहीं, कि नहीं आप जाहिल रहें, आप कुछ ना पढ़ें, आप जो है वो एक्सेल ना करें अपने नॉलेज के अंदर, नहीं, इसकी नफी नहीं की जा रही, बल्कि अमल करने की भी कोशिश करें, जैसा इल्म है उसके ऊपर अमल की भी भरपूर कोशिश करते रहें इखलास के साथ, अल्लाह की रजा की नीयत के साथ। और दूसरी चीज ये है कि अपने इल्म की हिफाजत करें, इल्म को बदलने की कोशिश ना करें, वरना मग़दूब जैसे ही बन जाएंगे ना, उन्हीं के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है इन दोनों बातों की। तो ये जो यहूद के उलमा थे, ये नबी अलैहिस्सलाम, ये हजरत उमर फारूक रहता उनके पास आए और कहने लगे कि हम ईद मनाते अगर हमारे ऊपर ये वाली आयत नाजिल होती, यानी अच्छा बात तो ये हो रही थी ना कि अपनी किताबों के भी इतने आलिम थे और कुरान मजीद को भी पढ़ते थे, ठीक है ना, कुरान मजीद के भी आलिम थे और आज भी हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि अपनी किताबें पढ़ते हैं, नहीं, इनको कुरान मजीद का भी के बारे में बहुत ज्यादा इल्म हासिल है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे जो है ना उनकी प्लानिंग्स होती हैं, और ऐसे ऐसे आपस में फिर प्लानिंग करते हैं कि अब इस कुरान मजीद के साथ हमने क्या करना है, कैसे इसको खराब करना है, कैसे मुसलमानों के अमल को इसके ऊपर से हटाना है। हमें तो अंदाजा ही नहीं है, हम तो जिस वहमो गुमान की दुनिया में रह रहे हैं ना, ये हमारे दुश्मन ऐसे नहीं है, हम अपने दुश्मन से गाफिल हैं, दुश्मन हमसे गाफिल नहीं है, ठीक है, वो मेहनतें कर रहे हैं, ठीक है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्ह ने सवाल किया कि वो कौन सी आयत है भाई, हैं तुम आए हो मुझे बताने के लिए ना, तो चलो बताओ कौन सी वाली आयत है। तो उन्होंने यही आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया पड़ी। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जवाब में फरमाया कि हाँ हम जानते हैं कि ये आयत किस जगह और किस दिन नाजिल हुई, ठीक है, बस इतना बता करके ना, जिसको कहते हैं ना टरखा दिया उनको, ठीक है ना, उनको टरखा दिया, हाँ बस ठीक है जाओ हमें पता है, ठीक है। इशारा उनका, इस जवाब से उनका इशारा क्या था, इसी बात की तरफ इशारा था कि वो दिन हमारे लिए दोहरी ईद का दिन था, एक अरफा का दिन, दूसरे जुमा का दिन, ठीक है ना, लेकिन नॉट एन ईद टू बी टू सेलिब्रेट लाइक द वे यू डू, ठीक है। यहूद का यूं इल्म को अपनी आवाम से छुपाने की वजह क्या थी, वजह अल्लाह ताला से बुग़्ज़, अल्लाह के रसूलों से बुग़्ज़, ठीक है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़, ठीक है, बुग़्ज़, इनाद, नफरत, चिढ़, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वजह थी उनकी, कि जो ऊपर से नाजिल हुआ है ना उसके अंदर अपनी गंद घोल करके फिर आगे देना है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वालों के साथ बुग़्ज़ होता है ना, ऊपर कौन है, नबी, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि नबी और अल्लाह के दरमियान वास्ता वास्ता थे, तो उनके साथ बहुत इनका, ठीक है। और दूसरी वजह जो उन्होंने लिख दी, ठीक है, दुनिया की मोहब्बत, क्या मतलब, अपने नफ्स की मोहब्बत, ठीक है, कि भाई मेरा हुक्म मानो, मेरी बात मानो ना, ठीक है, किसी और की क्यों मानते हो, रसूल की क्यों मानते हो, अल्लाह की क्यों मानते हो, मेरी मानो, मैं जो चाहूंगा उसके ऊपर अमल होना चाहिए, ठीक है ना, किसी और की बात के ऊपर क्यों अमल, ये होती है दुनिया की मोहब्बत, जिसमें सबसे बड़ा दुनिया का जो जो शक्ल होती है ना, वो इंसान का अपना नफ्स होता है, ठीक है, कि मेरी माँ, ये दुनिया सबसे बड़ी दुनिया क्या है जो कि हमारे अंदर रहती है, जिसको नफ्स कहते हैं। ठीक है, और एक और भी वजूहत है इसकी, कि जो इनके अमीर कबीर होते थे तो वो रिश्वत दे करके इनसे कहते थे कि नहीं, ये हुक्म जो है ना वो ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो। जैसे कि किसी बड़े के बच्चे ने चोरी करी तो अब उसका हाथ काटा जाए, तो नहीं, मेरे बेटे का हाथ कैसे काटा, चलो जी मौली साहब मुफ्ती साहब ये लीजिए आप, मैं आपको इतने इतना सोना दे देता हूँ, इतने आपको जो है वो माल दौलत से भर देता हूँ, आप ये फतवा दे दीजिए कि नहीं, इसके ऊपर जो है ना वो कोई ये वाली सजा अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो दुनिया की मोहब्बत की ये भी एक मैनिफेस्टेशन होती है, भी एक सूरत होती है कि माल दौलत लेकर के अल्लाह का हुक्म जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे तमाशे आजकल जो है मुसलमानों में भी काफी ज्यादा राइज हुए हुए हैं। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि यही वजह है। अच्छा, ये हो गया, तो यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ना, उनकी जो थी ना कि हम जश्न ईद मनाते, तो इस बात को बिल्कुल साइड पे कर दिया। ठीक है ना, उनको चलता कर दिया बस। ठीक है, हमें पता है, यू डोंट नीड टू टेल मी, मुझे पता है। आगे लिखते हैं कि ईद और त्यौहार मनाने का इस्लामी उसूल, तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के इस जवाब में एक इस्लामी उसूल की तरफ भी इशारा है, जो तमाम दुनिया की अकवाम व मजाहिब में सिर्फ इस्लाम ही का तुगरा इम्तियाज है। यानी ये वन ऑफ द यूनिकनेसेस ऑफ इस्लाम, बाकी सारे दूसरे मजाहिब वगैरह के मुकाबले में, वो क्या कि दुनिया में हर कौम और हर मजहब व मिल्लत के लोग अपने अपने हालात व खसूसियात के मातहत अपने खास खास तारीखी वाकयात के दिनों की यादगारें मनाते हैं, और इन अय्याम को उनके यहाँ एक ईद या त्यौहार की हैसियत हासिल होती है। ठीक है, यानी किसी ओकेजन के ऊपर जो है ना कि भाई ये मामला हुआ था और उस दिन ये हुआ था और उस दिन वो हुआ था, तो अब उसके ऊपर जो है ना बाकायदा एक त्यौहार मनाया जाता है, एक यानी सेलिब्रेशन होती है। ठीक है, सारे दूसरे ट्रेडिशंस में, अकवाम में, मजाहिब, कहीं कौम के बड़े आदमी की पैदाइश या मौत का या तख्त नशीनी का दिन मनाया जाता है, और कहीं यानी उस दिन बादशाह बने थे वो, तो वो उनकी थ्रोनिंग का जो दिन था उसको मनाया जाएगा, या कहीं किसी खास मुल्क या शहर की फतह, या और किसी अजीम तारीखी वाकये का कि जिसका हासिल अशखास खास की इज्जत अफजाई के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, यानी पर्सनैलिटी की इज्जत अफजाई जो है ना वो उसके लिए बाकायदा दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे आजकल जो है वो नॉन रिलीजियस वर्ल्ड जो जो बनती है, जिसको सेक्युलर वर्ल्ड भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो मदर्स डे, फादर्स डे, तो वाइफ्स डे, तो पता नहीं हस्बैंड्स डे, तो मेंस डे, तो वुमेन्स डे। ठीक है, तो शख्सियात के लिए जो है ना वो दिन मनाए जा रहे। ठीक है, और बाकी किंग्स डे या क्वींस डे और फलाना डे। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम अलै, अच्छा इस्लाम अशखास परस्ती का कायल नहीं है, शख्सियत परस्ती का इस्लाम कायल नहीं है। शख्सियत ही की जमा होती है ना अशखास परस्ती। ठीक है, इसका इस्लाम कायल नहीं, इसने इन तमाम रसूम जाहिलियत और शख्सी यादगारों को छोड़कर उसूल और मकासिद की यादगारें कायम करने का उसूल बना दिया। उसूल की यादगारें, मकासिद की यादगारें, वो क्या है, क्या मकसद है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, बंदगी। ठीक है ना, कि वो मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हें ए जिन और इंस, तुम्हें इस दुनिया में भेजने का एक ही मकसद है, वो ये है कि तुम बंदगी करो, तुम मेरी बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो। ठीक है, तो हमारी जिंदगी का मकसद बंदगी है। तो इस्लाम ने शख्सी यादगारों और इन तमाम रसूम जाहिलियत को छोड़ करके बंदगी की यादगारें कायम करने का उसूल बना दिया। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया, और कुरान करीम में उनके इम्तिहान और इन सब में मुकम्मल कामयाबी को सराहा गया, व इज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना का यही मफहूम है ना, कि जब याद करो उस दिन को कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खूब जो है ना वो जांचा किया, उनको जो है वो टेस्ट किया गया, उनके रब ने टेस्ट किया अपने कलिमात के जरिए से, यानी अपने अहकाम के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तुम ये करो, तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा करो, और पूरे पूरे उतरे वो उन सारे अहकाम के ऊपर। लेकिन ना उनकी पैदाइश या मौत का दिन मनाया गया, ना उनके साहिबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की पैदाइश और मौत या दूसरे हालात की कोई यादगार कायम की गई। ठीक है, हाँ उनके आमाल में जो चीजें मकासिद दीन से मुतअल्लिक थीं उनकी यादगारों को ना सिर्फ महफूज रखा गया बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के दीन और मजहब का जुज और फर्ज व वाजिब करार दे दिया गया। ठीक है, जैसे कुर्बानी जो कि इंशाल्लाह हम चंद दिन में करेंगे, वो क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का जो इरादा था वो अमल अल्लाह ताला को जो बंदगी की यानी इंतहा का अमल था उसको अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिया यादगार के तौर पर। खतना ये भी अंबिया की सुन्नत। ठीक है, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना ये किसकी है, ये उनकी बेगम साहिबा अम्मा हाजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, उनका अमल है, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम का उसके अंदर कोई अमल है, ना जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसके अंदर कोई अमल है। ठीक है, बल्कि एक खातून, ठीक है, उनका अमल है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान मर्द होते हैं उमरा करने जाते हैं उनको दौड़ना है। किसकी इतबा कर रहे हैं, औरत की इतबा कर रहे हैं। ठीक है, औरत के अमल की इतबा कर रहे हैं, यानी कि अब जो है वो, हाँ जब ही तो है वो औरत को जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए और जो है प्रेसिडेंट भी बनना चाहिए क्योंकि वहां पर भी तो औरत की इतबा हो रही, तो यहाँ पर भी औरत की इतबा। भाई अल्लाह ताला ने जो जारी किया उसी की इतबा करनी है, जो नहीं जारी किया उसकी इतबा नहीं करनी है। ठीक है, कि अब इसको जो है ना वो यानी वुमेन एम्पावरमेंट की एक दलील बना लिया जाए, ये भी शैतान तो ये भी कर सकता है। तो मिना में तीन जगह कंकरियां, भाई अगर कोई नए हैं तो उनको हम क्लियर कर दें कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं है, हम मेन एम्पावरमेंट के भी खिलाफ, राइट, बल्कि हमारा दीन सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं है, हमारा दीन मेन एम्पावरमेंट के भी खिलाफ है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा दीन एम्पावर नहीं करता, हमारा दीन जो है ना वो तो आजिज करता है, वो तो मुनकसर करता है, वो तो अपनी असलियत हमें दिखाता है कि तुम जो है ना वो गंदे गंदे पानी से बने हुए हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। एम्पावरमेंट तो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अहकामात की है। ठीक है, और जो अल्लाह का हुक्म मानता है बस उसकी एम्पावरमेंट है और किसी की एम्पावरमेंट नहीं है, ना मैन की ना वुमेन की। हाँ, जो दर्जात अल्लाह ताला ने बनाए तो भाई वो भी जिम्मेदारी के दर्जात बनाए ना। बहरहाल, तो कुर्बानी, खतना, सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, मिना में तीन जगह कंकरियां मारना, ये सब उन्हीं बुजुर्गों के ऐसे अफआल की यादगार हैं जो उन्होंने अपने नफसानी जज्बात और इंसान के तबीयी तकाजों को अल्लाह ताला की रजा जोई के मुकाबले में कुचलते हुए अदा किए थे, और जिनमें हर कर्न और हर जमाने के लोगों को इसका सबक मिलता है कि इंसानों को अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए अपनी महबूब से महबूब चीज को कुर्बान कर देना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की रजा जोई के लिए का मतलब क्या होता है, चलें जल्दी से बता दें फिर हम क्लास खत्म करें। अल्लाह की रजा जोई के लिए अपनी महबूब से महबूब चीज को कुर्बान कर देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह की रजा जोई, इसका क्या मतलब होता है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ना मकासिद दीन में से कैसे है, प्लीज समझा दें, दौड़ना मकासिद दीन में से कैसे है? वो क्या कर रही थी, वो वहां पर अम्मा हाजरा जो है वहां पर क्या कर रही थी, तो आप बता दें, अगर ये इस बार इसका जवाब आप दे दें तो हम फिर आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, वो पहुंची क्यों थी, वो तो मदे से जो है वो इराक में रहती थी, बल्कि मदे से जो है वो अपने अब्बा हुजूर के महल में रहती थी, अम्मा हाजरा इजिप्ट के बादशाह सलामत की बेटी थी। ठीक है ना, फिर बादशाह सलामत ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बांदी बना करके धीरे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली। ठीक है, तो फिर वो एकदम से उधर सफा मरवा कैसे पहुंच गई, उनका जी चाह रहा था टूरिज्म करने का जी चाह, जैसे आजकल सऊदी अरब में टूरिज्म हो रहा है, तो वो भी क्या सऊदी अरब टूरिज्म टूरिज्म करने के लिए आई थी, क्या करने के लिए आई थी जी, तो अल्लाह ताला की रजा जो ही, इसका जवाब आप दे दें तो फिर आपके जवाब सवाल का जवाब हम देते हैं। ठीक है, तो इंसानों को अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए अपनी महबूब से महबूब चीज को कुर्बान कर देना चाहिए। तो रजा जोई का मतलब क्या होता है कि जो अल्लाह का हुक्म आया है बवास्ते नबी अलैहिस्सलाम के, उस हुक्म की तामील, ये अल्लाह की रजा जोई है। अल्लाह की रजा जोई डज नॉट मीन कि आज मैं बैठे बैठे मुझे सूझ रही है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं, ठीक है ना। तो मैं सोचूं कि यार मैं जो हूं ना वो छत पे पंखा है ना, तो पंखे से लटक करके अल्लाह को राजी कर लेता हूँ, तो मैं जाकर के पंखे से लटक जाऊं, ठीक है ना, कि भाई मैं अल्लाह की राजी करने की नीयत से पंखे से लटकाऊं जाकर के, ठीक है ना। तो अब उसके लिए जाहिर है मुझे जो है वो अपनी इज्जत को कुर्बान करना पड़ा, जो महबूब चीज है मेरी, ठीक है, इज्जत महबूब होती है ना। तो मैंने अपनी इज्जत जो है वो कुर्बान कर दी पंखे से लटक करके अल्लाह को राजी करने की नीयत के साथ। वाह वाह वाह, तालियां बजा रहे हैं सारे के सारे, इन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी और अल्लाह की रजा की नीयत से उन्होंने पंखे से जाके अपने आप को लटका लिया, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं होती अल्लाह की रजा, ऐसे कोई अल्लाह की रजा नहीं मिलती। बेशक आप अपनी इज्जत कुर्बान करें, आप अपनी जान ही कुर्बान कर दें जाकर के, अल्लाह की रजा की नीयत करें और जाके अपनी जान कुर्बान कर दें, तो आपको अल्लाह की रजा मिल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा उल्टा जो है ना वो अल्लाह की अल्लाह का अजाब मिलेगा आपको, ठीक है। सही बात है ना, समझ में आई बात। ये पंखे से लटकने वाली मिसाल जो है वो इससे ज्यादा आपसे आउटरेजियस मिसाल आपको कोई नहीं दे सकता था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जो है वो कुंडे करने हैं, या जो है वो कहीं पे जाकर के जो है वो चक्कर काटने हैं, या जो है वो दौड़ना है, या कहीं जा करके जो है वो आपको बकरा कुर्बान कर देना है, या कुछ और कर देना है, ठीक है ना। बस मेरा मेरा जी चाह रहा है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं, और अल्लाह की रजा की नीयत से मैंने जा करके जो है वो ये काम कर दिया। नहीं, दिस इज नॉट अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा क्या है? जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, उस हुक्म को अल्लाह की रजा की नीयत से अंजाम देना, और उसके रास्ते में कोई भी चीज रुकावट बन रही हो, चाहे वो महबूब चीज हो, चाहे वो लेस महबूब चीज हो, चाहे वो नो महबूब चीज हो, बस उसको कुर्बान कर देना और अल्लाह की रजा पूरी करना, यानी अल्लाह का हुक्म पूरा करना, ये है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। यानी लेस महबूब चीज हो या जीरो महबूब चीज हो या महबूब से महबूब तर चीज हो, उसको अल्लाह के हुक्म की अताअत के लिए उसको साइड पे करना, यानी कुर्बान करना और अल्लाह का हुक्म पूरा करना, ठीक है। अपनी मन मर्जी से अल्लाह की रजा का फैसला करके और फिर कोई अमल करना, दिस इज नॉट अल्लाह की रजा। ये बिल्कुल हमारे दीन में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने जो कहा था कि सफा मरवा के दरमियान दौड़ने का क्या ताल्लुक है अल्लाह ताला के हमारी जिंदगी के मकासद से, तो भाई हमारी जिंदगी का मकसद बंदगी है ना, ठीक है। तो वो वहां पर क्या कर रही थी? वो वहां पर जो एग्जिस्ट कर रही थी ना, जो सफा मरवा के बराबर में जो वहां पे बैठी हुई थी ना, मौजूद थी ना, ठीक है, वो क्यों मौजूद थी? क्योंकि उनके जो शौहर थे वो अल्लाह के रसूल थे, और उनके शौहर को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि इनको ऐसे वीराने में छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो जब उनके शौहर उनको छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने बस इतना पूछा था कि आप अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं कि या किसी और वजह से छोड़ के जा रहे हैं, कंफर्म कर लिया, पूछ लिया है ना भाई। ऐसी जबरदस्त किस्म का अजीब व गरीब किस्म की चीज हो रही है कि न्यू बॉर्न बेबी को बीवी के साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने बस एक दफा पूछ लिया कि अल्लाह की रजा से छोड़ने के जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह की रजा से तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब उसके बाद उन्होंने, वो कहते हैं ना बीवियां लटक जाती हैं शौहर के गले में, ठीक है ना, जान नहीं छोड़ती फिर उसके बाद। तो वो बीवी, वो भी बीवी ही थी, ये कोई नहीं है पुराने जमाने की बीवियां अलग होती थी आज की बीवियां अलग होती है, नहीं, वो भी बीवी ही थी। तो वो ना तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले का हार बन गई, ना जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो गई, ना जो है वो चीख चिल्ला उन्होंने किया, ना उन्होंने जो है वो अपने बाल नोचे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना इस किस्म की कोई हरकत करी, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ वहीं बैठ गई। और जब बच्चा जो है वो रोना शुरू हुआ, तब उन्होंने जो है वो पानी की तलाश के अंदर दौड़ना शुरू किया, और सारा वक्त तो थोड़ी दौड़ रही थी, वो तो खाली उस वक्त दौड़ रही थी जब बच्चा नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, बाकी वक्त तो सहूलत से चल रही थी, ठीक है ना। जब बच्चा भी नहीं देख सकता था उनको, उस वक्त दौड़ रही थी। और आज आप जाएं उमरा करने के लिए, तो सही के ऊपर जो है वो मर्द तो क्या औरतें दौड़ रही होती हैं, मर्द तो क्या औरतें दौड़ रही होती हैं, और ऐसे मर्द हैं कि उनके साथ वो भी दौड़े होते हैं, यानी जो उनका महरम मर्द होता है ना, जो भी जिसके साथ आई हुई होती है उम्रा करने के लिए, तो खातून भी दौड़ रही है उनके साथ, उनका शौहर या उनका भाई वो भी दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या ताल्लुक है इसका दीन के साथ और अतात के साथ और बंदगी के साथ। बहरहाल जी हाँ, तो वो बंदगी कर रही थी, ये सारा का सारा दौड़ भाग ये सब बंदगी था। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा कि अहकाम शरीयत पे अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा मिलेगी। ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा, टाइम जो है क्लास का मुकम्मल हो गया है, तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोई सवाल या कोई कमेंट रह तो नहीं गया? ठीक है, चलें फिर यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।